मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 21 नवंबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च 2018 के बैच के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन युवा साथियों के नाम हैं विवेक केम, आप गुना मध्य प्रदेश से हैं, गौरव यादव गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं, अंजलि विश्वकर्मा गैरतगंज मध्य प्रदेश से हैं, अलका पांडे अलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, राधेश्याम गुप्ता बरोहिया उत्तर प्रदेश से हैं और अभिषेक मिश्रा भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। तो विवेक, गौरव, अंजलि, अलका, राधेश्याम और अभिषेक, आप सभी 6 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि कल मैंने जो अपने 7th बैच के स्टूडेंट्स से एक अनुरोध किया था, एक अपील की थी कि क्लासेस करने के बाद अब जब वो डेली ऑडियो लेक्चर सुन रहे हैं तो उनके सुनने में किस तरह का और कितना फर्क आया है इसके बारे में मुझे वो तर्कपूर्ण उत्तर लिखकर भेजें। और मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि बहुत से स्टूडेंट ने इसके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने तर्कपूर्ण तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं, यानी कि जो अपनी बात कही है उसका उन्होंने आधार भी प्रदान किया है, कारण भी बताया है। और सच पूछे तो ऐसे उत्तरों को पढ़ने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ, या सच पूछिए इनफैक्ट तो आत्मसंतोष की अनुभूति हुई कि नहीं, 15 दिन की क्लास करने के बाद अब आप लोगों के अंदर वह तर्क क्षमता के अंकुरण तो कम से कम धीरे धीरे फूटने शुरू हो गए हैं कि किसी भी बात को आप वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत कर सकें। और यही सिविल सर्विस परीक्षा की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य भी है, यदि कोई रहस्य होता है तो मैं अपने सभी ऐसे स्टूडेंट्स के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं। लेकिन जो स्टूडेंट और अपनी प्रतिक्रियाएं भेजना चाह रहे हों वो आज तक अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। मित्रों, जहां तक मुख्य विषय का सवाल है, आज हम कल के विषय को ही आगे बढ़ाएंगे। फिल्म पद्मावती के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे, उसी पर हम और आगे बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन्हें थोड़ा देख लेते हैं। और सच पूछिए तो फिर से आज हमारे पास बात करने के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण खबर नहीं है, फिर भी मैं एक खबर की तरफ आपका ध्यान जरूर दिलाना चाहूंगा। और वो खबर है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठनात्मक चुनाव की घोषणा कर दी है कि किस तरीके से उनके संगठन में चुनाव होंगे। मित्रों, यहां खासकर मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा जो पॉलिटी की समझ के लिए बहुत जरूरी है। आपने देखा है कि जो मेंस के एग्जाम का जो आपका सेकंड पेपर है जनरल स्टडीज का, उसमें एक शब्द है पेपर का, अगर आप नाम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही साथ पॉलिटी, पॉलिटी गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से उस पेपर का नाम है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी इस लिहाज से सही होगा कि आप पॉलिटी को समझ सकें। तो चुनाव होते हैं फ्रेंड्स, खासकर एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में 2 स्तरों पर होते हैं। पहला तो सरकार के स्तर पर, जो संसद और विधानसभा के चुनाव होते हैं, जो अभी गुजरात के चुनाव होने जा रहे हैं। दूसरे जो चुनाव होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के अपने स्तर पर होते हैं, मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे डेमोक्रेसी के एक तरह से पिलर्स होते हैं, डेमोक्रेसी को मूर्त रूप देने वाली जो संस्थान है वो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी ही है। तो पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी के अंदर भी चुनाव कराती है, जैसे आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनके, जैसे अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोनिया जी अभी कांग्रेस की राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष हैं। तो लगातार इस तरह के चुनाव होते रहते हैं, कभी कभी वो लंबे भी खींच जाते हैं, वो अपनी पार्टी के अपने अपने लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने निर्णय हैं। लेकिन पार्टी के चुनाव कैसे होंगे, कब होंगे, याद रखिए कि इसका निर्धारण करने का पूरा अधिकार पार्टी के संगठन को है, इस बारे में कोई भी व्यवस्था संविधान के अंतर्गत नहीं की गई है, संविधान के अंतर्गत नहीं है। हाँ, चुनाव आयोग जो है हमारा, उसने पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं, कुछ शर्तें बना रखी हैं, उन शर्तों का पालन पॉलिटिकल पार्टी को करना होता है, अदरवाइज यह उनका अपना अंतर्निहित निर्णय है कि वो चुनाव कराते हैं नहीं कराते हैं, किस तरीके से कराते हैं, किसको चुनते हैं, ये पूरा अपना उनका निर्णय होता है। एक प्रश्न जो पिछले साल के सिविल सर्विस में पूछा गया था, मैं उधर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, मैं केवल सेंस बता रहा हूं। सेंस उसका यह था कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, यानी कि एक लोकतांत्रिक पद्धति तो चुनाव पर आधारित पद्धति है, उस चुनाव पर आधारित पद्धति में जो पॉलिटिकल पार्टी है, यानी कि उस चुनाव को मूर्त रूप देने वाली जो संस्थान है जिसे हम पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं, वो अपने आप में कितने डेमोक्रेटिक है, वो अपने आप में कितने लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक होने का मतलब है कि अगर वो अपनी पार्टी के चुनाव नहीं करा रहे हैं, या कह लीजिए कि पार्टी में पर कुछ ही लोगों का प्रभुत्व बना हुआ है शुरू से लेकर के आखिरी तक, या बहुत ही लंबे दौर तक बना हुआ है, तो ये तो डेमोक्रेसी के, यूं कह लीजिए कि उसकी आत्मा या उसके स्वरूप के विरुद्ध है, क्योंकि चुनाव होने चाहिए। ये बात अलग है कि चुनाव में फिर वही आ जाए या जो भी हो। तो इसको लेकर के एक प्रश्न पिछले साल पूछा गया था, यानी कि आप देखिए कि वो संविधान का प्रश्न नहीं है, वो गवर्नेंस का भी प्रश्न नहीं है। संविधान को लागू करने की जो पॉलिटी आ रही है उससे रिलेटेड वो प्रश्न है, राइट। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में की है कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंक्शनिंग होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, उनके जो अधिकार होते हैं, सरकार के साथ उनके जो संबंध होते हैं, इनके बारे में भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। मित्रों, सच पूछे तो इसके अतिरिक्त हम लोगों के पास अब न्यूज एनालिसिस में बात करने के लिए कुछ विशेष नहीं है, और मैं अब सीधे ही आज के मुख्य विषय पर ही आना पसंद करूंगा, क्योंकि मुख्य विषय पर बात करने के लिए हमारे पास ढेर सारे पॉइंट्स हैं। तो आज के मुख्य विषय को मित्रों मैं नाम देना चाहूंगा शीर्षक के तौर पर कि फिल्म पद्मावती से बनते प्रश्न, यानी कि जो फिल्म पद्मावती को लेकर के अभी जो हमारी स्थितियां बनी हुई हैं, आप देख रहे हैं कि पूरे देश में एक तरह की बहस चल रही है, आंदोलन भी चल रहे हैं, उनको उनके आधार पर सिविल सर्विस के लिए किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। याद रखिए कि मैं यहां जो बात कर रहा हूं वो पूरी तरह से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके कर रहा हूं, बिल्कुल सिविल सर्विस, बहुत ही फोकस्ड तरीके से। मित्रों, मैं एक बात अपनी बात शुरू करने से पहले आप सबसे कहना चाहूंगा, जो मैंने अभी कही उसी से जुड़ी हुई बात है। देखिए, अभी जो भी पूरा का पूरा माहौल है पद्मावती फिल्म को लेकर के, बहस का दौर शुरू है, और आप देखिए कि बहुत बड़ा वर्ग इसमें शामिल हो चुका है, आंदोलन में भी शामिल हो चुका है, बहस में भी शामिल हो चुका है, प्रिंट मीडिया पर भी बहस जारी है, सोशल मीडिया अपने ढंग से उस बहस को रूप दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी बहस हो रही है। आप देखिए कि प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं, जिन्हें आप संगठन कह लीजिए, सामाजिक संगठन भी इसमें शामिल हो गए हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें धीरे धीरे शामिल होती जा रही हैं, साथ ही साथ व्यवस्था भी शामिल हो गई है, सरकार भी शामिल हो गई। देखिए, अगर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, या राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, या पंजाब के चीफ मिनिस्टर, या वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर, तो हम यही मानेंगे कि सरकार भी शामिल हो गई है। तो ये स्वरूप आपके दिमाग में बहुत क्लियर होने चाहिए कि कौन कौन लोग शामिल हैं। फिल्म जगत के लोग शामिल हैं, कुछ बुद्धिजीवी शामिल हैं, कुछ इतिहासकार अपनी बातें रख रहे हैं, तो अलग अलग लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, और यही तो बहस की खूबसूरती होती है, ये बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? आप अपनी आइडेंटिटी को पहचानिए। जो मैंने अपने सेवंथ बैच के स्टूडेंट को, सभी बैच के स्टूडेंट को मैं बहुत ही क्लियरली केस स्टडीज के मामले में मैं उन्हें बताता हूं कि आप अपनी आइडेंटिटी को पहचानिए। आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपकी आइडेंटिटी है सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले एक स्टूडेंट की, एक प्रतियोगी की। तो अब आप इस बहस में कैसे शामिल होंगे? अगर आप इस रूप में शामिल होते हैं, तो यदि आप एज ए सिटीजन इस बहस में शामिल होते हैं, तो फिर आप कोई भी रास्ता ले सकते हैं, कोई भी अपनी ओपिनियन बना सकते हैं, यह स्वतंत्रता आपको है, और डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई ओपिनियन बन भी चुकी होगी, ठीक है, उसकी पूरी स्वतंत्रता आपको है। लेकिन मित्रों, जब हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं, तब फिर हमारी ओपिनियन क्या होनी चाहिए? क्या मेरी जो अभी व्यक्तिगत तौर पर ओपिनियन है, एक सिटीजन के रूप में ओपिनियन है, वही ओपिनियन मैं वहां भी रखूंगा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अपने आंसर शीट में या इंटरव्यू बोर्ड के सामने, या मेरी ओपिनियन कुछ दूसरी होनी चाहिए। मुझे लगता है मित्रों कि मेरी ओपिनियन कुछ दूसरी होनी चाहिए, और जो मेरी ओपिनियन जो दूसरी होगी वह संविधान सम्मत होगी। यानी कि संविधान मुझे किस तरह की ओपिनियन को ड्रा करने के लिए कह रहा है, मतलब किस तरह की मेरी ओपिनियन बननी चाहिए, संविधान मुझे किस बात की इजाजत देता है, ये आपके दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अब मैं जो कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूं कि पद्मावती की फिल्म के बहाने कौन कौन से प्रश्न सिविल सर्विस में किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, इनका जो कंक्लूजन आप निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, यानी कि आप जो अपना मत स्थापित करेंगे, उसके केंद्र में हमारा संविधान होना चाहिए। संविधान होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, मेरी अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए, बावजूद इसके कि वह है, लेकिन वो सिटीजन के रूप में है। ये मेरी एक विनम्र सलाह आप सबसे सबके सामने है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम प्रश्नों को देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न इस फिल्म से बन सकते हैं। जो पिछले जो हमारे अनसॉल्व पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं को आधार बना करके मैंने कुछ प्रश्न ढूंढे हैं, या यूं कह लीजिए कि प्रश्न तो नहीं ढूंढे हैं, टॉपिक ढूंढे हैं, और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न किस तरह से बनते हैं इसकी चर्चा मैं कल कर चुका हूं। देखिए, एक प्रश्न बन रहा है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को लेकर के, है ना, जिसे हम बोलचाल की भाषा में सेंसर बोर्ड कहते हैं, कि सेंसर बोर्ड का रोल। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया सुनवाई करने से इनकार करते हुए कि नहीं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, ये फिल्म सेंसर बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की बात है, तो वहां जाइए, लेट हिम डिसाइड। ये बहुत अच्छी बात है, संस्थाओं की मर्यादा की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। मतलब यहां उसने नहीं दिखाया कि नहीं हम ही सुप्रीम है और हमारे पास जो आएगा हम तो किसी के बारे में कोई भी फैसला दे सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि पद्मावती फिल्म के साथ जो सबसे बड़ी विडंबना है, अभी सेंसर बोर्ड ने पारित नहीं किया है, कुछ नहीं हुआ है, अभी किसी ने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा तूफान, इतना बड़ा तर्कशास्त्र उसको लेकर के खड़ा हो गया है। ये इसकी एक विडंबना ही आप कह लीजिए। फिल्म रिलीज होने के बाद जब बात होती है तो फिर तथ्यों पर बात होती है ना, कि देखिए फिल्म में ये चीजें हैं, लेकिन अभी तो तथ्य है ही नहीं, अभी तो हम केवल एक इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि ये हो सकता है, राइट? तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने संस्थागत मर्यादा की रक्षा की है, ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने एक जो वक्तव्य दिया है वो ये कि इस बोर्ड के बिना पास किए ही फिल्म पत्रकारों को दिखा दी गई, ये गलत किया गया। अब हमें ये जानना है कि ये गलत किया गया या नहीं किया गया, क्योंकि अब आप देखिए कि एक डेमोक्रेसी में, अब इसको आप डेमोक्रेसी की दृष्टि से देखिए, वो कुछ पत्रकारों को दिखाई गई है और पत्रकार अपनी बात रख रहे हैं, राइट? तो क्या केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के किसी कानून में ये बात लिखा हुआ है कि बिना उनके पास किए यह फिल्म किसी को भी नहीं दिखाई जा सकती? हाँ, यस, आप कमर्शियल तरीके से नहीं दिखा सकते कि पब्लिक को आप दिखा रहे हैं और पैसा वसूल कर रहे हैं, पब्लिकली नहीं दिखा सकते, सार्वजनिक रूप में नहीं दिखा सकते, लेकिन एक्सक्लूसिव ग्रुप को दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते, इसके बारे में क्या केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास कोई नियम है? दूसरी चीज आप देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, हाई कोर्ट में जब कुछ मामले चल रहे होते हैं तो उस मामलों पर बकायदे खूब सारी बातें मीडिया में आनी शुरू हो जाती है, अखबारों में बहस होने शुरू हो जाते हैं, फिल्में तक बन जाती हैं। आप देखिए कि जो निठारी जो आपके जो सॉरी निठारी नहीं आपके जो आयुषी कांड हुआ उस पर फिल्म तक बन गई और बाद में फैसला आया। तो क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रेस, जो कि पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट करती है, उसके अपने कोई अधिकार नहीं होते? तीसरी बात आप ये भी उठा सकते हैं कि अगर प्रेस में बात हो रही तो होने दीजिए, आप तो अपने नियम कानून के हिसाब से तटस्थ होकर के, निष्पक्ष होकर के अपना काम कर दीजिए। तो ये एक दूसरा प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। दूसरा प्रश्न जो बनता है फ्रेंड्स, वो है आस्था का प्रश्न। आप देखिए कि पद्मावती फिल्म को लेकर के यही कहा जा रहा है कि जो पद्मावती जी हैं वो आस्था की हमारी केंद्र रही हैं, राजपूत शान, आन बान शान की प्रतीक हैं, और नो डाउट कि लोक व्यवहार में इसी तरह की उनकी इमेज भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो कह रहे हैं कि उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश इस फिल्म में की गई है, यह है। अब ये जो आस्था का प्रश्न है, आप देखिए कि सीधे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से जुड़ गया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मजेदार बात यह है कि जो आस्था शब्द है इसका प्रयोग संविधान में नहीं है। अगर हम जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है 19वें अनुच्छेद में है और उसमें जो अ है 19वें अनुच्छेद का अ, वो वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात कहता है। ये आपको रट जाना चाहिए 19ए। लेकिन उसके साथ ही बकायदे उसमें प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। ये निर्बाध नहीं है, निर्बंध नहीं है कि आप कुछ भी बोलते रहिए किसी के बारे में, है ना। लेकिन उसमें जो शब्द दिया गया है जिसको आधार लेकर के ये बात कही जा सकती है, जिसकी व्याख्या की जा सकती है, वो शब्द आपको मालूम होने चाहिए। ये सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले के लिए मैं एक एक्सक्लूसिव उपाय बता रहा हूं, जिससे कि आपकी रैंकिंग बहुत हाई चली जाती है। अदरवाइज तो हम सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें कह देते हैं, लेकिन जब हम उसको एक्सक्लूसिव बनाते हैं तब हम विशिष्ट हो जाते हैं। देखिए उसमें उन्होंने क्या कहा है, लोक व्यवस्था, इस शब्द का उन्होंने उपयोग किया है। लोक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर। अगर सरकार को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है तब प्रतिबंध लगा सकता है। फिर दिया हुआ है शिष्टाचार या सदाचार के हितों में, इसके लिए इंग्लिश का शब्द दिया है डिसेंसी आर मोरलिटी, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान में आस्था का की बात नहीं है कि किसी की आस्था को आप ठेस पहुंचाएंगे तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह मैं आपको लॉजिक के लिए तथ्य दे रहा हूं कि आप अपनी बात को, जैसा कि मैंने कहा कि संवैधानिक ढांचे में आपको रखना है तो कैसे रखेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद मित्रों जब हम फंडामेंटल ड्यूटी में जाते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटी के तहत आप देखेंगे कि दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट कही गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारे मूल कर्तव्य जो बाद में जोड़े गए हैं, उस मूल कर्तव्य में जो दो बातें मैं आपके सामने स्पेशली रखना चाहूंगा, देखिए उसमें एक है जो 51 क है, 51 क अनुच्छेद, ये भी अनुच्छेद आपको मालूम होना चाहिए, 51 क मूल कर्तव्य। इसके तहत उन्होंने एक दिया हुआ है जे के अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जी के अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अब आप देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमेनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये मूल कर्तव्य, ये भी संविधान ही है। और इसी में एक और भी पॉइंट है जो च के अंतर्गत है दोस्तों, वो है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। उसके ऊपर फिर से दिया हुआ है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। यह हमारे मूल कर्तव्य के तहत है। तो अब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स और मूल कर्तव्य के कुछ वो बिंदु बताए हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से रट जाने चाहिए, मूल शब्द के साथ रट जाने चाहिए, ताकि आप एक रेफरेंस के तौर पर उनका इस्तेमाल कर सके। तो दूसरा प्रश्न जो बनता है दोस्तों वो है आस्था का प्रश्न। तीसरा मैं अब आपको टॉपिक बता रहा हूं, वक्त नहीं रह गया है, इतिहास बनाम आख्यान। ये भी एक बहस चल रही है कि पद्मावती का इतिहास में उल्लेख उस तरीके से जो प्रेम प्रसंग है उसका उल्लेख उस नहीं है। फिर है प्रेशर ग्रुप्स, जो सामाजिक संगठन है जिसे हम दबाव समूह कहते हैं, जो आपके सिलेबस में बाकायदे मेंशन किया हुआ है, इनकी क्या उपयोगिता है, ये किस तरह से काम करते हैं। फिर कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर के आप देखिए कि नाक काट करके ले आओ और गर्दन काट करके ले आओ, इस तरीके की धमकियां दी जा रही हैं, तो कानून और व्यवस्था की स्थिति इससे किस तरह से भंग हो सकती है। राज्य क्या कर रहे हैं, राज्य को ऐसे समय में क्या करना चाहिए। और एक टॉपिक और भी है, नेक्स्ट और लास्ट है फ्रेंड्स, वो है रचनात्मकता। रचनात्मकता अगर आप इस तरीके से बाहर के प्रेशर्स डालेंगे, दबाव होगा रचनाकार के ऊपर जहां वो कल्पना का सहारा नहीं ले सकता, तो इसका रचनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्रिएटिविटी कैसे आगे आएगी, जिसे हम आजकल बहुत इसके लिए प्रचलित शब्द हो गया है नवोन्मेषता, राइट। तो ये मैंने कुछ आपको टॉपिक बताए हैं मित्रों। अब वक्त नहीं है कि इन टॉपिक पर हम लोग अलग से बात कर सकें, तो इसे अब मैं यहीं समाप्त करता हूं। जहां तक क्लिपिंग्स का सवाल है, ढेर सारी क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप अपने अपने ढंग से आप सभी देख लेंगे। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, शंभू सिंह भाटी, चंद्र कुमार अग्रवाल, गुना मध्य प्रदेश, शिवेंद्र मिश्रा, शैली अग्रवाल आप भी गुना मध्य प्रदेश से हैं, आशुतोष शुक्ला इलाहाबाद से, पुरुषोत्तम पीयूष बालोद छत्तीसगढ़ से, श्वेता राज चंपारण बिहार से, प्रांशु राठौर इंदौर मध्य प्रदेश से, पूजा तिवारी लखनऊ उत्तर प्रदेश, नीता गायकवाड़, सुनील कुमार जोधपुर राजस्थान, चंदन सिंह कुंवर, संदीप कुमार इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, धनराज पलवाड़े औरंगाबाद महाराष्ट्र, प्रीति अर्चना तिर्की, लीलावती कुमारी पटना बिहार से, मंटू वर्मा, चेतन प्रकाश वर्मा और सिद्धार्थ यादव बनहारी महाराजगंज से, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।